ओम शांति। हमारे में से अधिकतर भाई बहनों ने साकार बाबा और मामा को शायद देखा नहीं है, परंतु उनकी पालना में पले हुए जो विशेष आदि रतन है वे हमें साकार बाबा मामा का अनुभव अवश्य कराते हैं। ऐसे ही एक यज्ञ के आदि रतन हमारे आदरणीय आमीरचंद भाई जी हमारे बीच उपस्थित है। हम सभी आपका सभा में बहुत 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 स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है। आपने 1958 में ज्ञान प्राप्त किया और उसी समय से आप ईश्वरी सेवा में समर्पित हो गए। आप सोशल विंग के चेयरपर्सन है, ब्रह्मा कुमारीज एजुकेशन सोसाइटी के फाउंडिंग मेंबर्स में से आप एक है, राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के आप एक बोर्ड मेंबर भी है। वर्तमान समय चंडीगढ़ में रहते हुए आप नॉर्थ जोन की सेवाओं का कारोबार भी देख रहे हैं। तो साकार बाबा मामा की पालना के अनुभवों के बारे में हम सुनेंगे आदरणीय आमीरचंद भाई जी। पीछे बैठे हुए भाई बहनों से निवेदन है सभी कृपया आगे आके बैठ जाए। जितने भी लोग पीछे बैठे हैं सभी से निवेदन है आगे आके बैठ जाए।
ओम शांति। बहुत अच्छा लगता है जब कभी भी मुझे वह अनुभव शेयर करने के लिए कहा जाता है। साकार मम्मा बाबा की पालना के तो सारे सीन मेरे अंतर मन में इमर्ज हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि हम एक तरफ मैं देख रहा हूं डायमंड हॉल में बैठे हुए हैं, हजारों की संख्या में भाई और बहनें यहां पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, 18,000 20,000 इससे भी ज्यादा संख्या भाई बहनों की, कितना उमंग उत्साह बाबा के प्यार में सब यहां खींच के आते हैं। कितनी ट्रैवलिंग करके नेपाल से भी मैंने देखा है भाई बहने इस ग्रुप में आए हुए हैं, और भी दूर दूर से काफी भाई बहने 10-12 दिन के बाद यहां इकट्ठे हो जाते हैं। बाबा का प्यार सबको खींच के यहां ले आ रहा है। एक तरफ ये सीन मेरे सामने है और दूसरा वो सीन के जब मैं पहली बार मधुबन में आया था, वो सीन जब मैं इमर्ज करता हूं अपने अंतर मन में वो कैसा सीन होगा। फिफ्टी नाइन में मैं बाबा से मिलने मई मास में मधुबन आया था। 1958 के एंड में 1958 के एंड में मैं सेवा केंद्र पर मेरा आना हुआ था। और उस समय का जो वातावरण और जो साधन और सेवा का जो स्वरूप था वो बिल्कुल आज से भिन्न था, बिल्कुल अलग था। बाद में आने वाले भाई बहने मैं समझता हूं विजुअलाइज भी नहीं कर सकते कि उस समय के साधन और सेवा किस रूप में हुआ करती थी। आप सब ने संभवतः ये समाचार सुना होगा कि 14 साल की तपस्या के बाद कराची से सारा ये यज्ञ जिसमें 350 के लगभग भाई बहने थे शिव बाबा के आदेश से भारत में आए माउंट आबू में 5 मई 1950। तब सब यहाँ पर माउंट आबू पहुंचे थे और उसके कुछ समय के बाद ही शिव बाबा के आदेश से भारत की सेवा आरंभ हुई थी। जब बहने पहली बार मधुबन से बार सेवा पर जाना हुआ था, नॉलेज बिल्कुल नई थी। ये ज्ञान उस समय पर आप विजुअलाइज करो, अभी भी कभी कभी मुरली में आप सुनते होंगे साकार बाबा की मुरली में कि बच्चे प्रदर्शनी को, अभी कुछ दिन दो दिन पहले भी आपने सुना होगा कि प्रदर्शनी को इंश्योर कराओ, आग से भी और से भी इसकी संभाल करो। ऐसे दिन ये भी बहुत बाद की मुरलियां हैं, 1964-65 की मेरा ख्याल है ये मुरली होगी। उससे और पहले जब हम लोग आए बाबा के पास, बहुत विरोध था, इस ज्ञान को लोग समझ नहीं पाते थे। उस समय पर अगर किसी को ये बात कही जाती थी कि परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, तो लोग कहते थे ये हिंदू धर्म के विरोधी संस्था है, इसलिए बहुत बुरा मानते थे। और उसके बाद जब धारणा की बात आती थी, अन्न का परहेज खास तौर पर और ब्रह्मचर्य की पालना गृहस्थ जीवन में, ये बात लोगों को समझ में ही नहीं आती थी। गृहस्थ जीवन में पवित्रता की बात तो शुरू से विरोध रहा है, 1936-37 से शुरू से साकार बाबा को भी सबको भी, आप सबने सुना होगा अच्छी तरह से कि कितना इसके लिए सहन करना हुआ, ये बात समझ में नहीं आती थी। जब बाबा ने पहले पहले ये बात सुनाई कि हम सब परम धाम से सतयुग में आए थे, देवता थे, और देवता की लाइफस्टाइल क्या होती है, भक्ति में गा रहे हैं सब लोग, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, पर संपूर्ण निर्विकारी का मैं नहीं समझता। मंदिरों में देवताओं की घंटी बज रही है, भोग लग रहा है, पूजा हो रही है, पर ये पवित्र हैं, गृहस्थ जीवन ये नहीं समझ आती थी लोगों, इसलिए बहुत विरोध होता था। तो एक तरफ विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ स्थापना का कार्य आगे बढ़ना है, तो इसके लिए साकार रूप में जो मम्मा बाबा ने सामने हम देखते थे, मम्मा बाबा का शक्तिशाली स्वरूप भी देखते थे, प्यार का स्वरूप भी देखते, स्नेह का स्वरूप बहुत ज्यादा। जो बहने भाई उस समय पर आते थे सेवा केंद्रों पर, जुड़ जाते थे थोड़ा बहुत, उनकी जो पालना एक एक के ऊपर व्यक्तिगत ध्यान रहता था, एक एक के ऊपर। भले ज्ञान के हिसाब से, समझ के हिसाब से ये बात हमारी समझ में आ गई कि निराकार परमपिता परमात्मा फिर से सृष्टि को सतयुगी बना रहा है साकार प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम के द्वारा। समझ में आ गई थी। और ईश्वर के बारे में तो सब मानते हैं, भक्ति में भी और सब मानते हैं कि वो प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर है, भंडार है। अब ये सुना तो हुआ था, हमने पढ़ा हुआ था, विश्वास भी था, पर जब साकार में बाबा को देखा, साकार में जैसे हम मधुबन पहुंचे, और मधुबन क्या था अगर मैं वो बताऊंगा तो बहुत विस्तार हो जाएगा। एक फैमिली हाउस था, छोटा सा फैमिली हाउस। उस समय का मधुबन 1959 का जो शुरुआत का मधुबन, बिल्कुल बहुत छोटा सा, जैसे कि हम अपने गांव में जाएं तो जैसे एक घर के अंदर पुरानी हवेली जैसे होती है, 5-4 कमरे, 5-10 कमरे होते हैं, लाइक दैट। अभी जो मधुबन में गए होंगे या देखा होगा, ना हिस्ट्री हॉल, ना ओम शांति भवन की तो बात छोड़ दीजिए, मैं अंदर पांडव भवन की बात कर रहा हूं, या ट्रेनिंग सेंटर जहां पर शांति स्तंभ है उसके सामने का पोर्शन, किचन, नो, ट्रेनिंग सेंटर भी नहीं, हिस्ट्री हॉल भी नहीं, मेडिटेशन हॉल भी नहीं। ये जो कमरे थे ये बाद में बने हैं, निर्वैर भाई का ऑफिस जो है, और उसके ऊपर और ऊपर उधर एरोप्लेन जिसे हम कहते हैं, ये सारी बिल्डिंगें बाद की हैं। बिल्कुल बिल्कुल पुराना छोटा सा घर था अंदर में, और बाबा का जो क्लास होता था, मुरली चलाते थे बाबा, वो हाल आप लोग जरूर जिन्होंने नहीं देखा देख करके आना अंदर। जैसे हम पांडव भवन के अंदर जहां पर दादी जी का सिटिंग रूम कहलाता है, अंदर बिल्कुल सामने सामने अंदर अगर आपको जाने दें, कोशिश करना जाने की, यीशु दादी का ऑफिस हुआ करता था राइट हैंड साइड पर, और उसके पीछे एक छोटा सा हाल है, अभी भी है, वो बाबा का क्लासरूम था। वहां बाबा मुरली चलाते थे, मम्मा बाबा सामने बैठते थे। जब मैं पहली बार बाबा के पास मुरली के समय पर पहुंच बैठा था, तो मैंने गिनती किया था कि हम सब मधुबन निवासी मिला करके 35 थे, 35 लोग, और मुरली के नीचे लिखा जाता था कि मधुबन का फुल सीजन चल रहा है। आप देखिए, आप 35 भाई बहने पार्टी मिला करके, 15 के लगभग मैं समझता हूँ मधुबन निवासी होंगे, 15-20, बाबा इतना ही रखता था थोड़ा सा, और बाकी पार्टी वाले। और पार्टियों में आने वालों की संख्या कितनी होती थी, 2-4, 2-4, इससे ज्यादा नहीं होती थी। और वो भी खास क्योंकि बाबा ने जब दादियों को सेवा पर भेजा, विद दिस कंडीशन भेजा कि आपने वापस आना है पंडा बन करके, खाली नहीं आना। दादियां जब चली गई, सेंटर खुलने लगे मधुबन से, अब दादियां 14 साल तक पालना ली, और वो वापस आना चाह, बाबा से मिलने के लिए दिल होती थी बहुत, इसलिए एक भी अगर तैयार हो गया तो कहती थी चलो मैं ले चलती हूं क्योंकि पंडा बन के जाऊंगी। इसलिए उस समय का जो सिस्टम था बहुत छोटा सा फैमिली की तरह हुआ करता था। अब क्योंकि संख्या कम थी और विरोध ज्यादा था, इसलिए मम्मा बाबा का स्वरूप जो पालना का था वो बहुत विचित्र था, बहुत विचित्र था, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हम जैसे फ्रेश होकर के बाबा के रूम में हमें ले जाया गया, हम 4 या 5 थे मैं समझता हूं, बाबा के सामने बैठे। जैसे आज हम मुरली में पढ़ते हैं कि सिक्की लदे बच्चे कल पहले वाले बच्चे। अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखते हैं, लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड, बिछड़े हुए बच्चे। ये शब्द हम सिर्फ पढ़ते और सुनते हैं। अब उस समय पर हम बाबा के सामने जब बैठे, बाबा ने दृष्टि दी, कोई भी जो भी बाबा के सामने बैठता था वो सीन देखने वाला होता था कि अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। बाबा के नैनों से जैसे हमारे नैन मिलते थे, वो जो अंदर प्यार बाबा का कि बाबा भी वही है मैं भी वही हूं, 5000 वर्ष के बाद जैसे बाबा से मिल रहा हूं, 5000 वर्ष के बाद इमेजिन कीजिए। आज भी हमें जब भाई बहने सेवा केंद्रों से आते हैं, टीचर्स भी हैं और भी, अभी तो किन्हीं कारणों से स्टेज पर भी आना पॉसिबल नहीं है। जब स्टेज पर आते थे, रिबन वगैरह योर सिस्टम था, तो बहुत बहने और भाई कहते थे हम बाबा के सामने एक सेकंड भी चाहे दृष्टि लेवे, सामने भले सामने यहां तो बैठे हैं, बाबा आएगा दृष्टि लेंगे, पर नजदीक जाकर के जैसे कि उसका वाइब्रेशन नजदीक से लेवे शक्तिशाली, ये हर एक का संकल्प रहता था, अभी भी है। तो उस समय पर ये बिल्कुल सामने जैसे हम बैठे हैं बाबा के साकार रूप में, और बाबा के नैनों में परिवर्तन आ जाता था, जैसे लव, जिसने प्यार जैसे नैनों से नजर आता था और बोथ वेज होता था। इसलिए चाहे कोई बाता हो, चाहे कोई बहन हो, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, सभी ही कंट्रोल नहीं कर पाते थे और बाबा से गले मिलते थे गोद में जाकर के। दैट वॉज द सिस्टम बाबा। जैसे कि अभी भी कई फैमिलीज में ऐसा है, मैंने देखा है, जब बहुत कोई कई समय के बाद आते हैं तो लौकिक परिवार में गले मिलते हैं। ऐसे बाबा से हम मिलते थे, और वो जो कुछ दिन हम 5-7 दिन को, कुछ दिनों में रिजर्वेशन वगैरह तो होते ही नहीं थे, पहले से टिकट बुक करा के आओ जाओ ये सिस्टम ही नहीं था। सिस्टम ये तो बाद में, ये सारा 3 टायर 2 टायर ये सारा सिस्टम बाद में बना है। मैं कई दफा कईयों को हंसाता हूं कि मेरी 19 साल की उम्र थी, हम लोगों ने तो गांव में रहते थे, बाद में शहर में आए थे, ट्रेन भी नहीं देखी थी। दिल्ली मैं पहली बार आया था जब बाबा से मिलने के लिए, तो हम लोगों को कुछ समय के बाद, मैं हंसाता हूं सबको, हमें ये नॉलेज ही नहीं थी, रेलवे की भी नॉलेज नहीं थी। तो उन दिनों में बाद में ये 2 टायर 3 टायर रिजर्वेशन शुरू हुआ था, तो कोई बात कर रहा था कि 3 टायर में या 2 टायर में 2 टायर में चलेंगे, तो मैं दूसरे को कहने लगा क्यों बस में जाना है, ट्रेन में नहीं जाना इस बार, टायर की बात हो रही है ना। जैसे 3 टायर और 2 टायर की जैसे समझ ही नहीं थी रिजर्वेशन की। और पहली बार जब रिजर्वेशन रेलवे ने शुरू किया तो 25 पैसे मुझे याद लेते थे रिजर्वेशन का, पर वो डिब्बा खाली रहता था, हम कहते थे इकट्ठे होके अपने यहीं बैठेंगे जनरल डिब्बे में, उस डिब्बे में कोई जाता ही नहीं था। बड़ी एक सिंपल सी लाइफ हुआ करती थी उन दिनों में, और मम्मा बाबा का इतना अटेंशन होता था। और आपने ये सुना होगा कि जैसे आजकल आप देखो, एक क्लास पूरा होता है फिर दूसरा क्लास, बीच में मार्जिन भी नहीं रहता कई बार, भाई साहब अभी गए निर्वैर भाई मैं बैठ गया हूं, ऐसे लगातार क्लासेस चलती रहती है सवेरे शाम। और उन दिनों में स्वाय मुरली की और कोई क्लास ही नहीं होती थी, कोई क्लास नहीं, बाबा की मुरली बस, दैट इज सफिशियंट। बाबा आए मुरली पर, बाबा के तीनों रूप हमने देखे, बाप भी, टीचर भी, सतगुरु भी। जब बाबा मुरली चलाता था, वो बेशक हम 30-35 बैठे हुए हैं, पर बाबा की मुरली जय सारा विश्व के लिए जैसे शक्तिशाली, इतना इफेक्टिव होता था बाबा की मुरली कि तीन चार दिन के बाद जो भाई बहने बाबा से मिले मधुबन में आए, अगर उनमें जरा भी किसी चीज की धारणा की कुछ परसेंटेज में कमी थी, 100%, 100%। इसलिए लोग पता क्या करते थे, ब्रह्मा कुमारी के पास न जाओ जादू लग जाता है, ओवरनाइट चेंज इमीडिएट। मुझे याद है कि जब मैं आया था सेंटर पर, दो दिन के बाद हमारी मनोहर दादी टीचर थी, उन्होंने कहा भाई योग सीखना है तो आप ऑफिस में काम करते हो वहां जरा ये चाय पीना जो होता है ना बाहर का जरा ना इसका परहेज करना होता है। तो मैंने पता क्या जवाब दिया था, बहन जी आपने दो दिन पहले क्यों नहीं बताया, मैंने दो दिन तो चाय पी ली है, कि पहले दिन ही अंदर हम छोड़ना चाहते थे, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई रीजनिंग नहीं, एक्सेप्टेंस, ओनली एक्सेप्टेंस, ये आत्मा को ये चीज चाहिए, रियलाइज होता था देवता है तो फिर ये चीजें जो है ये तो, इसलिए लोग कहते थे जादू हो जाता है। जिनको बात समझ में आती थी, मम्मा बाबा की शक्ति इस ढंग से काम करती थी। युगल जिनके दो बच्चे छोटे छोटे होते थे मैंने देखा, आए मम्मा बाबा से मिले या उससे पहले ही कंप्लीट धारणा, संकल्प मात्र भी बिल्कुल को और संकल्प ही नहीं, खत्म बस, संपूर्ण जिसे कहते हैं, ये मम्मा बाबा की शक्ति काम करती थी टीचर रूप में। और बाप रूप में हमने देखा, जैसे मैंने आपको सुनाया, बहुत प्यार का स्वरूप, इतना प्यार का स्वरूप होता था कि जो आते थे उनका जाने का मन नहीं होता था। और बाबा जो पीछे रास्ता है पांडवों के पीछे का रास्ता, वो रास्ता हुआ करता था, वहां से हम पहाड़ी चढ़कर के ऊपर को जाते और आते थे। ये जो रास्ता पांडवों का, यहाँ एक टूटा हुआ लकड़ी का गेट था, इधर नहीं जाते थे ओम शांति भवन की तरफ, मम्मा बाबा लेकर के हमें जाते थे नाश्ते के बाद घुमाने के लिए, इधर जंगल था और एनिमल्स थे। उधर बाबा जाकर के लास्ट में एक पेड़ है बहुत बड़ा, वहां पर बाबा सबको विदाई देते थे। मगर मैंने वो सीन कितने देखे हैं कि माताएं बहनें भाई वहां जाकर के थोड़ी दूर फिर बाबा करके वापस आ जाते, जाना ही नहीं चाहते थे। एक सीन मुझे याद, इतना प्यार का स्वरूप मेरा भाव ये, इतना प्यार का बाबा के साथ अनुभव होता था, अपनेपन का, प्यार का। एक हाथरस से युगल आ गया, दूसरे दिन उनको को बिजनेस में थे, टेलीग्राम आ गई और उनको जाना जरूरी था, उनकी मिसिज और दोनों, बाबा को पता लगा कि इन्होंने जाना है। वो सीन लगभग दो घंटे हमने देखा, जैसे बाबा उनको विदाई देते थे उनकी युगल दौड़ के वापस आ जाती थी। बाबा को फिर छुपा दिया गया, बड़ी मुश्किल से लेकर के वो वहां से विदाई उनकी हुई, जाना ही नहीं कोई चाहता था। कभी बाबा के साथ खाना खा रहे हैं, कभी बाबा के साथ पिकनिक कर रहे हैं, कभी बाबा के टोली खिला रहा है, कभी बाबा का, क्यों, कारण क्या, मैं अंदरूनी भाव मेरा ये है कि वो फाउंडेशन था साकार में, मैं ऐसा मानता हूं। 18 जनवरी 69 से पहले मैं ऐसा मानता हूं, तब कोई संपर्क संबंध की भाषा ही नहीं होती थी, मधुबन में केवल ब्राह्मण ही आ सकता था, नो कोई दूसरा अलाउड नहीं था, कारण के वो फाउंडेशन था। फाउंडेशन इस विद्यालय की जो है पवित्रता की धारणा की इतनी जबरदस्त है, जो आज ये सारा विस्तार जो आप देख रहे हैं ये प्योरिटी का है, पवित्रता का है, पवित्रता की शक्ति काम कर रही है, जो दादी जी कल बता रहे थे मूल पहली शक्ति क्या है, पवित्रता की। और उस पवित्रता की शक्ति को धारण के लिए बाबा ने, इसलिए बाप का, टीचर का और सतगुरु का रूप भी हमने देखा, खास तौर पर योग में जब बाबा दृष्टि देते थे, एक सेकंड भी किसी के ऊपर अगर दृष्टि रुक जाती थी उसकी बैटरी जैसे चार्ज हो जाती थी, इसलिए भाई वो दिन भी अभी गीत मैंने वो लाइन सुनानी थी, वो गीत उन्होंने सुना दिया कि वो दिन भी कितने प्यारे थे और ये दिन भी कितने प्यारे हैं। मगर इसका फिर अपना महत्व है। ये जो आज वातावरण है, इतना संगठन नहीं था, इतना शक्तिशाली वाइब्रेशन नहीं था। ये फिर आज अभी जो अनुभव होता है, इसकी वैल्यू कम नहीं है। इतने हजारों भाई बहने इकट्ठे हो जाएं, तो आने वालों की बैठी वो भी तो चार्ज होती है। उसमें छोटे में शक्ति थी, मम्मा बाबा की पालना का अनुभव था, और अभी संगठन की शक्ति काम कर रही है। इसलिए वो दिन भी बहुत प्यारे थे और ये दिन भी बहुत प्यारे हैं। धन्यवाद। ओम शांति।